તારીખ 27/7/1997 ડાયરીના બોલ નંબર 154 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 99
સ્વરૂપ આત્માર્થી કા સ્વરૂપ અર્થાત સંયુક્તની યથાર્થ ભૂમિકા કે લક્ષણ આત્માર્થી કે લક્ષણ જો આત્માર્થી સમ્યક કો પ્રાપ્ત હોને લાયક હોતા હૈ વો કૈસા હોતા હૈ જિસકો માર્ગ પ્રાપ્તિ કા એક માત્ર લક્ષ્ય હોતા હૈ કે મુજે મોક્ષ માર્ગ ચાહિયે અબ સંસાર માર્ગ મે નહીં રહેના હૈ માર્ગ મેને ઉપાય સંસાર સે છૂટને કા ઉપાય ઉસકી પ્રાપ્તિ કા એક માત્ર લક્ષ્ય ઉસકા દૂસરા પહેલું એ કે જિસકો અનંત જન્મ મરણ સે યા પરિભ્રમણ સે મુક્ત હોને કે અપૂર્વ જિજ્ઞાસા અપૂર્વ ભાવના અપૂર્વ જરૂરત વેદનાપૂર્વક ઉત્પન્ન હોઈ હો કિસ પ્રકાર સે વેદનાપૂર્વક ઉત્પન્ન હોઈ હો એસે ખાલી પેલી વિચાર આ ગયા વિકલ્પ આ ગયા વો બાત નહીં હૈ ઉસકી વેદના હોને જરૂરી હૈ બાર વર્ષ પહેલા તમે લોકો મળ્યા પહેલા તમારે 3 વર્ષ થયા ને આ તો 12 વર્ષ પહેલા ની વાત જીવન મેં બાહ્ય સંયોગ પ્રાપ્તિ કા ધ્યેય ન હો પૂર્વ પ્રારબ્ધ કો જૈસા ભી સંચિત કર્મ હૈ ભોગ લેના હૈ ખાતા ખતમ કરને કે લિયે કરજ દેને કે લિયે તો કરજ ક્યા હૈ સંચિત કર્મ હૈ વો હમારા કર્મ હૈ કરજ હૈ ઉસકો ચુકતો કરના હૈ इसलिए ऐसा होगा तो ठीक वैसा होगा तो ठीक वो बात नहीं है जीवन में वो लक्ष्य नहीं वो ध्येय नहीं होना चाहिए वरना परिणाम लगे ही रहेंगे नहीं लगे रहेंगे तो होगी संयोग की उपेक्षा संयोग हो जाएंगे गौण जो भी होगा हो रहा है सब प्रारब्ध अनुकूल होगा होने दो अपने को तो खाता चुप तो करना है जीवन में संयोग पदार्थ की प्राप्ति का ध्येय तो नहीं होना परंतु परिपूर्ण शुद्ध निष्कलंक दशा प्राप्त करने का ध्येय होना चाहिए, पूर्णता का ध्येय हो गया, परिपूर्ण शुद्ध पूर्णता का ध्येय हो गया, लक्ष्य हो गया। अंतर के उड़ान से स्वरूप प्राप्ति की अपूर्व भावना होनी चाहिए कि जिसकी उत्पत्ति के पहले जी। वो भावना के उत्पत्ति के पीछे उसका बैकग्राउंड में कोई राग द्वेष की भूमिका नहीं हो, एक आत्मा में से ही भावना उत्पन्न हो, कोई राग द्वेष के कारण से अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण से उत्पन्न नहीं हो, ऐसी वितरागी भाव भूमिका। राग द्वेष नहीं, वही वितराग है, उस भूमिका की वितरागता वही है, उसके आधार से उत्पन्न हुई वो भावना। ये जो स्वरूप प्राप्ति की भावना है
जी।
वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस भूमिका का। ये भावना सफल हुए बिना नहीं रहती। और अंतर का उन्नयन से ऐसी भावना होगी तो उस भावना में ही परिणाम लगे रहेंगे। लगन लगेगी तो दूसरे परिणाम कहाँ से आएंगे, इसकी लगन लगेगी तो दूसरे परिणाम कहाँ से आएंगे, और ये लगन नहीं है तो इधर उधर के परिणाम आए बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि उदय तो चालू ही है, उदय के परिणाम आए बिना रहेंगे नहीं। उदय सबको चालू ही है, एक समय ऐसा नहीं जाता कि आठों कर्म का उदय नहीं हो। जैसे एक आयुष्य है, किस वक्त आयुष्य का उदय नहीं है, कंटिन्यू जन्म से मरने तक आयु का उदय कंटिन्यू है, वैसे दूसरे सात कर्म का भी उदय कंटिन्यू है। आयु जब पूर्ण होता है दूसरा आयु दूसरे भव में चालू होता है, बीच में ट्रैवलिंग होता है इधर से छुटकर किधर भी जाने का, तो बीच में आयु कर्म का उदय नहीं है, लेकिन सातों कर्म का उदय तो हमेशा ही है। एक आयु कर्म का उदय एक समय के लिए या दो समय के लिए या ज्यादा से ज्यादा तीन समय के लिए नहीं होता, विग्रह गति में पक नहीं आया आयु चालू हो जाता है, फिर वो आयु पूरा हो जाता है वहां तक लगातार रहता है। तो ये एक दो तीन समय कोई गिनती का विषय नहीं है, वो तो केवल ज्ञानी का ज्ञान का विषय है। इसलिए मोटे रूप से संग्रह नहीं से बोला जाता है कि आठों कर्म का उदय संसारी जीवों को निरंतर होता ही है, और जीव उदय में परिणाम लगाता है तो नया कर्ज आता है। जो उदय आया वो तो कर्ज चुकाने का मौका आया है, देवू चुकावा है, मैंने देवू बधाई बधाया, देनदारी बधाया, ये हालत करते हैं। सही आत्मकल्याण की भावना में आगे तो ये उदय के परिणाम उदय में नहीं जाएंगे, उदय चालू रहेगा परिणाम उदय में नहीं जाएंगे, वो तो कल्याण की तालाबेली लगने में लगे रहेंगे। यही कर्तव्य है। अभी बात वही हुई कि तीव्र भावना या यथार्थ भावना के अभाव में ये परिणाम की गड़बड़ सबकी चलती है। जो भी बताते हैं कि आज मेरे वो गड़बड़ हुई, आज मेरे वो गड़बड़ हुई, कि हम बाहर निकले ही नहीं हमारी लगन में से, तो क्या होगा? मालूम हो गया कि हमको अच्छे से अच्छा मौका मिला है। कैसा मौका मिला है? अच्छे से अच्छा मौका मिला है। मनुष्य भाव, जैन धर्म, सत्संग, अब क्या चाहिए? मनुष्य भाव आनंद द्वार मिलता है, जैन धर्म में भी आनंद द्वार आता है, लेकिन सत्संग नहीं मिलता है। तो आत्मकल्याण का जो विशेष साधन है वो भी मिल गया। इतना अच्छा मौका मिला है तो हम इसके पीछे पूरे क्यों नहीं लग जाए और इसका पूरा लाभ क्यों नहीं उठाए? गुरुदेव कहते थे कि ऐसा मौका मिले तो इस काम करने के लिए एक दफे पागल हो जाना चाहिए। कैसा? पागल होकर के पीछे लग जाना चाहिए। पागल नहीं है ये, तो विवेक है, वो तो पागलपन नहीं है, ये विवेक है, महाविवेक है। लेकिन दुनियादारी के लोग ऐसे कहेंगे कि ये साला पागल है, अपनी संभालता नहीं है, न घर को संभालता है, न कुटुंब को संभालता है, न बच्चे को संभालता है, न संपत्ति को संभालता है, पागल हो गया है। तो हो जाना चाहिए ऐसा ही, पागल हो जाना चाहिए। और ऐसा पागल होने से कुछ खराबी होने वाली नहीं। आप कितनी भी सावधानी रखो तो प्रारब्ध में वही होगा, पर आत्मकल्याण की सावधानी में आ जाओ तो भी होने वाला ही होगा, क्योंकि प्रारब्ध तो बदलता नहीं, और न बदलाने की अपने को अपेक्षा भी है। फिर क्यों नहीं करें? ऐसा होना चाहिए। ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं, और अब मिला है तो ये दाव मुझे चुकना नहीं है।
ऐसा होता तो
है,
ऐसा होता तो
ये मोह है जीव का, और कुछ दर्शन मोह है, तीव्र दर्शन मोह है, इसलिए ऐसा होता। जो मूल्य दे रखा है संयोग को, वो छूटता नहीं। तो सावधानी कितनी भी रखो, प्रारब्ध तो बदलने वाला है, है?
नहीं पे विश्वास की कमी है, इसी
पे विश्वास नहीं आता है, खुद को इसी बात पे विश्वास नहीं आता है, प्रारब्ध को। हाँ, तो अपने पुण्य का, प्रारब्ध का भरोसा नहीं है, तो कर्ज बढ़ा देता है और कर्ज नया कर्म का बढ़ जाता है, और दुख अपने अकेले को भोगना पड़ेगा। कोई उसमें
हिस्सेदारी
नहीं करेगा, पार्टिसिपेट कोई नहीं करेगा। वाल्मीकि ऋषि हुए ना जिसने रामायण लिखी, वो वालिया लुटेरा था, वाल्मीकि नाम तो बाद में उसका, उसको वालिया लुटेरा बोलते थे। वो क्या करता था कि जो भी जंगल में सफर करने को निकले, लूटे मारे, फिर लूटे, लूटने वाला क्या करता है, पहले मारता है। लूट करने एक तरीका होता है, ढाक बैठ जाए और सामना, सामने वाला सब दे देता है, फिर भी मारो मत, तुम ले लो हमारा, ये ले लो, वो ले लो, हमको मार मारो, फिर भी मारता मारता है। एक दफे किसी सज्जन को उसने मारा, वो कोई आदमी कोई नजर वाला था, बोला कि ये आदमी हार्टली खराब नहीं है, करता है लूटफाट करता है अपना गृहस्थी चलाने के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उतना खराब नहीं दिखता है। तो उसने बोला कि तुम ये क्यों करता है? तो पेट भरने के लिए। तो तुम कितना खाते हो? तो उतना खाते हो, तो फिर तुम तो ज्यादा करते हो, तो बच्चे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, तो अकेला कर्म बांधता है, तुमको दुख भी अकेला को भोगना पड़ेगा, तो तुम हमको हमारे से बचने के लिए ये वार्ता करता है सब। हम तुमको नहीं लूटे, तुम हम तुमको नहीं मारे, इसलिए तुम ऐसा कर रहे। तो ऐसा नहीं, ऐसा करो तुम हमको बांध दो, ये पेड़ के साथ हमको बांधो, तो तुम अपने घर जाओ, हम तो भगने वाले हैं नहीं, हमको तो बांध दिया है, और अपनी पत्नी से परिवार से पूछ लो, मैं इतना पाप करता हूँ, आप सबों के लिए करता हूँ, तो इसका जो कर्म फल है आप सब सब साथ में भोगेंगे, मंजूर है कि नहीं है?
बोलो।
तुम्हें नहीं, हमको दुखी नहीं होना है, हमको तो सुखी होना है, लेकिन हम तुम्हारे लिए करते हैं तो तुम तुम्हारे जानो, हमको तुम्हारे साथ दुखी नहीं होना है, संसार तो स्वार्थ का होता है। बस उसने धंधा छोड़ दिया, वो जंगल में आया, उस आदमी को छोड़ दिया, उसके पैर में पड़ गया, तुमने मेरी आंख खोल दी। अनपढ़ आदमी था, लूट करने वाला लुटेरा था, बन गया बड़ा महर्षि बन गया, वो जंगल में ही रहा, वाल्मीकि का आश्रम बनाया, रामायण लिखा। हमको ये करना है, स्वार्थी हो जाने की बात है, किसके लिए परिणाम हम संयोग का प्रति लगाते हैं, किसके लिए?
हमारा
पूर्णता के ध्येय के प्रति पूरी लगन से लगने वाला आत्मा से कैसा होता है? पूरी लगन से लगने वाला, उसके पीछे इसका जोश होता है, उसको धगस बोलते हैं, जोर से आगे बढ़ने वाला।
बोलते जाते बोलते जाते उठते नहीं, यहाँ पे भी ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे है,
विराधना करने होने का क्या कारण है? कैसे विराधना बताइए?
आपसे पूछती हूँ, किसी का दिल होता जल्दी जाने का, घंटा ही सुनना,
जिसको नहीं बैठना हो तो उस जबरन थोड़ी ना बैठाता,
कभी कभी मेरे को भी होता है ऐसा, दूसरे को क्या बोलूंगा।
ठीक है, सब सबके जितनी रुचि हो, भावना हो, उतना भाग ले, नहीं हो तो नहीं देवे। जिसको जितना भाव हो उतना काम करो, कोई थोपने की बात तो नहीं है ना, बस बात फिर क्या, अपने ओर से थोपने की बात नहीं होनी चाहिए।
खाना खाने को अपन बोलना, पानी पीवे तो अति नहीं लगे, ऐसा उठना नहीं जाना नहीं, तो फिर ऐसा बोलते ना, पर ये क्या सत्संग इतना सत्संग
जी, जिस समूह में बैठे हैं सत्संग भवन है उसमें सब तरह के लोग हैं, अगर कंटिन्यू 4-5 घंटे आप सत्संग करते हैं, कोई अवलोकन करना चाहता है, कोई सोना चाहता है, रूम एक या दो ही है, तो फिर किसी को आता है भाई इसका कुछ नियम बना दो कि इतनी बजे से इतनी बजे रहेगा तो क्या हम असाधना नहीं होगा, तो वहाँ तक तो कुछ सोचने जैसी बात है नहीं है।
तो पर 2-3 तो कमरे हैं
नहीं वहाँ पर, इसमें क्या है वहाँ पर जूनियर सत्संग भवन के अंदर वो बहनों के लिए ही, मगर ये जाते हैं तो शाम को दोपहर में वहीं पे रहते हैं, एक तरह से पे एक रूम में सोते हैं, एक एक बाजू में हर्षद पे सोते हैं, और एक बार बाजू में है इनकी चर्चा चलती है।
नहीं हर्षद भाई वो पुराने सत्संग भवन में सोते सोते हैं, वहाँ
वहीं सोते
हैं, और क्या ठहरे हैं कहाँ,
ठहरे भी वहीं हैं,
ठहरना तो इधर ठहरना कर दो, ठहरने का कर दो।
अब बाद में क्या वो दोपहर में भोजन के लिए जाते हैं आप लोग भी, तो वहीं पर ठहरते हैं क्योंकि वापस आना जाना नहीं पड़े। अब क्या बहन किसी को प्रमाद हुए सोने का भी हुए तो बोल रहे हो तो डिस्टर्ब तो हुए ना,
तो हो तो
विराधना भी तो नहीं होनी चाहिए, आप भी सोते हो दूसरे को सोना हो, समूह की बात
नहीं, वो व्यवस्था रखने की है कि ठीक है कि अपने को सत्संग इस जगह पे करना है कि दूसरे को कोई तकलीफ नहीं हो, वो बात ठीक है,
यानी ये सत्संग चल रहा है और कोई उठे या कोई सोए वहीं पर तो
नहीं, वहाँ तो अच्छा नहीं सोना, जहाँ सत्संग चलता है वहाँ सोना नहीं चाहिए, तो सोने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए,
वैसा है नहीं वहाँ,
तो उधर सत्संग करे नए नए सत्संग
ऐसा होता नहीं है, इसलिए क्या कल मेरे को भी बोलने का हुआ
नहीं, उसको क्या व्यवस्था का विषय है, ये तो मैनेजमेंट का विषय है, मैनेज अपने को करना है आपस में बैठ करके
चर्चा करते रहते हैं साथ में,
करो तो मैं सत्संग करो, पर बड़ी व्यवस्था विचारी ने करवानो, आने जाने का लंबा हो जाता है,
वॉकिंग में जाओ वालों या यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं दोनों के घुटने में दर्द है ना तो बार बार आना जाना पड़े तो वहीं बैठ जाते हैं, तो सबकी रुचित है, हमारे को समझाओ हमारे को समझाओ,
शाम को खाना खाने का होता है।
वैसे सत्संग का कोई निषेध नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू एक ही साथ 4-4 घंटे अपन बैठते हैं, तो अब क्या दोपहर में किसी को सोने की भी इच्छा होती है, किसी को होती है,
वो तो मैनेजमेंट का विशेष है, तो आपस में बैठ करके मैनेज कर लेना, जिसको भी तकलीफ होती हो, किसी को तकलीफ नहीं हो और तो क्या बात है,
जैसे हीरा बेन बोल रही है हमारे को तकलीफ नहीं, मगर दूसरे को सोने की भी इच्छा हो,
हाँ, कोई बात
एकाद थोड़ी लेना चाहिए,
हाँ, और तो मैनेजमेंट ना उसी से बुझू कहीं मोटी बात पे हमारा પછીનો જ મુદ્દો છે જરા વિશેષ વિચારવા જેવો છે, પૂર્ણતાને લક્ષ્ય શરૂઆત કરવાને લીધે નિજ પ્રયોજનના વિષયમાં સહેજ સૂક્ષ્મ અને તીક્ષ્ણ દ્રષ્ટિપૂર્વક પ્રવર્તનાર, આત્માર્થ કેવો હોય છે, પ્રયોજનની દ્રષ્ટિ સહેજ સૂક્ષ્મ અને તીક્ષ્ણ થઈ ગઈ હોય, એનું કારણ એનું પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય છે, એટલે બારીક નજર થઈ જાય છે, પૂર્ણ શુદ્ધ થવું છે ને એટલે થોડો પણ દોષ પકડાય નાનો પણ દોષ પકડાય, એની પ્રયોજનની દ્રષ્ટિ સૂક્ષ્મ છે અને તીક્ષ્ણ છે, વિકાસ નો આધાર આ એક મુદ્દા ઉપર છે. જેટલી પ્રયોજનની પકડ એટલી મુમુક્ષુતા વર્ધમાન થાય. પ્રયોજનની પકડ જેટલી ઢીલી એટલી ગડબડ વધવાની. આ સમજી લઈએ, પ્રયોજનને તીવ્રપણે વળગી રહેવું જોઈએ, પછી કોઈ ઉદયમાં તમને તકલીફ નહીં થાય. બધે તમે પ્રયોજનની પકડમાં રહેશો. આના ઉપર થોડીક વિશેષ ચર્ચા વિચારી લેજો, આપણે ક્યારે કરશો પ્રશ્ન હોય તો. આ એક મહત્વનો વિષય છે. જરા
જય નંબર જય નંબર.